ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण से पाठ अष्टम स्कंद विश्वाध्याय श्लोक संख्या 16 से 21। बोर्ड में 21 नंबर है, उसको आवृत्ति करेंगे। तद्वामनं रूप अवर्धताद्भुतम् हरेर अनंतस्य गुणत्रयात्मकम् भूखं दिशोद्योर्विवरापयोधय श्रियं नृदेवारुषयो यदासत। तद्वामनं रूपम् अवर्धताद्भुतम् हरेर अनंतस्य गुणत्रयात्मकम् भूखं दिशोद्योर्विवराः पयोधय श्रियं नृदेवारुषयो यदासत। तद्वामनं रूपवर्धतान्भुतम् हरेर अनंतस्य गुणत्रयात्मकम् भूखं दिशोद्योर्विवराः पयोधय श्रियं नृदेवारिषयो यदासत। हरे कृष्ण, क्योंकि 16 नंबर श्लोक से आगे है तो इसमें तात्पर्य कई श्लोक में नहीं है, तो इसलिए उसको वहीं से पढ़ते हैं ताकि समझ में आए। श्लोक नंबर 16 कल 15 नंबर हुआ था। एवं सप्त स्वगुरुणा सत्यान्न चलितो महान वामनाय ददाओ एनम अर्चितो उदकम पूर्वकम। सुत गोस्वामी ने आगे कहा, आपने गुरु द्वारा इस प्रकार स्थापित होने पर भी महापुरुष होने के नाते बलि महाराज अपने संकल्प से डिगे नहीं, अतएव प्रथा के अनुसार उन्होंने सर्वप्रथम वामन देव को जल अर्पण किया और तब उन्हें वह भूमि भेंट की जिसके लिए वे वचन दे चुके थे। श्लोक 17। विंध्या बलिस्तदागत्य पत्नी जाल कमालिनी आनिन्ने कलसम हेमं वने जन्यपांग भुतम। बलि महाराज की पत्नी विंध्यावली ने जो गले में मोतियों का हार पहनी थी वहां पर तुरंत आई और भगवान की पूजा करने के निमित्त उनके चरण कमलों को पखारने के लिए अपने साथ पानी से भरा सोने का एक बड़ा जलपात्र लेती आई। श्लोक 18। यजमान स्वयं तस्य श्रीमत् पादजुगं मुदा अवनीज्याहंगी तदपो विश्वपावनी। वामन देव की पूजा करने वाले बलि महाराज ने प्रसन्नतापूर्वक भगवान के चरण कमलों को धोया, फिर उस जल को अपने सिर पर चढ़ाया, क्योंकि वह जल संपूर्ण विश्व का उद्धार करता है। 19। तदा सुरेन्द्रं दिवि देवतागणा गंधर्व विद्याधरा सिद्ध चारणा तत्कर्म सर्वेपि गुणंत आर्जवम प्रसून वर्षेर वृसूर मुदान्विता। उस समय स्वर्गलोक के निवासी तथा देवता गंधर्व विद्याधर सिद्ध तथा चारण सभी बलि महाराज के इस सहज द्वैतरहित कृत्य से परम प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके गुणों को प्रशंसा की तथा उन पर लाखों फूल बरसाए। इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि आर्जवंग अर्थात सहजता, ये द्वैत से रहित होना ब्राह्मण वैष्णव का गुण है। वैष्णव को स्वतः ब्राह्मण के सारे गुण प्राप्त हो जाते हैं। यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वे गुणस्तत्र समासुते सुरा। वैष्णव में ब्राह्मण के सारे गुण यथा सत्य समा दमा तितिक्षा तथा आर्जवम होने चाहिए। वैष्णव के आचरण में दोगलापन नहीं हो सकता। वह बलि महाराज ने अचल श्रद्धा तथा भक्ति के साथ भगवान विष्णु के चरण कमलों की सेवा की तो स्वर्गलोक के समस्त वासियों ने उस कार्य की प्रशंसा की। श्लोक 20 में कहा गया कि गंधर्वो किंग पुरुषो तथा किन्नरों ने पुनः पुनः हजारों दुंदिधियां एवं तुरियां बजाई और परम प्रसन्न होकर गाना शुरू किया। बलि महाराज कितने महान पुरुष है और उन्होंने कितना कठिन कार्य संपन्न किया है। यद्यपि वे जानते थे कि भगवान विष्णु उनके शत्रुओं के पक्ष में है तो भी उन्होंने भगवान को दान में संपूर्ण 3 लोक दे दिए। श्लोक 21 आज का है। तद वामनम रूपम वर्धतान्भुतम हरेर अनंतस्य गुणात्रयात्मकम भूखं दिशो द्योर्विवरापयोधय श्रियंगदेवारुषयो जलासत। तब अनंत भगवान जिन्होंने वामन का रूप धारण कर रखा था भौतिक शक्ति की दृष्टि से आकार में बढ़ने लगे, यहाँ तक कि ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं जिनमें पृथ्वी अन्य लोक आकाश दिशाएं ब्रह्मांड के विभिन्न छिद्र समुद्र पक्षी पशु मनुष्य देवता तथा ऋषिगण सम्मिलित थे उनके शरीर के भीतर समा गए। तात्पर्य, बलि महाराज वामन देव को दान देना चाह रहे थे किंतु भगवान ने अपने शरीर का ऐसा विस्तार किया कि बलि यह देख लें कि इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु पहले से ही भगवान के शरीर में है। वस्तुतः कोई भी व्यक्ति भगवान को कुछ भी नहीं दे सकता, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु से पूर्ण है। कभी कभी कोई भक्त गंगा नदी को गंगा जल अर्पित करते देखा जाता है। वह गंगा में स्नान करने के बाद अंजलि में गंगा जल भरकर गंगा को वापस अर्पित करता है। वस्तुतः जब कोई गंगा से एक अंजलि जल लेता है तो गंगा का कुछ घटता नहीं। इसी प्रकार जब कोई भक्त गंगा में एक अंजलि जल डालता है तो उससे गंगा जी में कोई वृद्धि भी नहीं होती, किंतु ऐसे अर्पण से भक्त माता गंगा का भक्त बनने का यज्ञ प्राप्त करता है। इसी प्रकार जब हम श्रद्धा तथा भक्ति के साथ कोई वस्तु अर्पित करते हैं तो अर्पित की गई वस्तु न तो हमारी होती है, न ही इससे भगवान के ऐश्वर्य में कोई वृद्धि होती है, किंतु यदि कोई मनुष्य अपना सब कुछ अर्पित करता है तो वह भक्त के रूप में मान्य हो जाता है। इस संबंध में यह उदाहरण दिया जाता है कि यदि कोई अपने मुखमंडल को माला तथा चंदन के लेप से सजाकर दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखे तो उसके चेहरे का प्रतिबिंब आपने आप सुंदर लगने लगता। हर वस्तु के मूल स्रोत भगवान है, जो हमारे भी आदि स्रोत है। अतएव जब भगवान को सजाया जाता है तो भक्त तथा सारे जीव स्वतः सज जाते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहम श्रीगुरो श्रीजितपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानितंश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बलि महाराज वामन देव को दान देने के लिए जो वचन दे चुके थे, आपने गुरु जी के बहुत समझाने पर भी वो राजी नहीं हुए, देने के लिए तैयार हो गए। इसके परिणाम में उनके गुरु शुक्राचार्य ने क्रोधित होकर के उनको साप दिए। कल साप का वर्णन आप सुने हैं, किस प्रकार शुक्राचार्य ने उनको क्रोध में ऐसे वचन बोले कि अब सारे अस्तित्व से भ्रष्ट हो जाएगा, पतन हो जाएगा। तो इस प्रकार क्रोधित सापित वचन सुनने के बाद में भरी सभा में वामन देव के सामने बलि महाराज का क्या होता है, ये अभी वर्णन इसी श्लोक में किया गया, कई श्लोकों से श्रृंखला में। तो इस प्रकार अपने गुरु द्वारा स्थापित होने के बाद उनको कुछ नहीं फर्क पड़ा, वो आपने डिसीजन से बिल्कुल डगमगाए नहीं। वो जैसे गुरु जी साप देकर गुस्से होकर आपने चेयर में बैठ गए जा करके, तो मरो जाओ, खत्म हो जाओ, तो नष्ट भ्रष्ट हो जाओ। तो बोले ठीक है गुरु जी, थैंक यू। और आकर के वामन देव बोले ठीक है, अभी जो वचन दिया हूं आपको देने के लिए त्रिपाद भूमि, आप लेना शुरू कीजिए, मैं वचनबद्ध हूं, आप लीजिए। तो देने के लिए तैयार हो गए वामन देव। अब जब इतने अपोजिशन, इतने भारी अपोजिशन हुआ, यहां तक कि स्वयं उनके आचार्य आकर के मना किए, समझाए, क्रोध हो करके अभिशाप दे दिए, फिर भी हटे नहीं, डिगे नहीं, उन्होंने वामन देव को देने के लिए तैयार हो गए। तो देखिए यहां एक बात होता है, हम लोग बलि महाराज से गृहस्थ थे, अब उनके सामने ये चैलेंज आया कि ये जो ब्राह्मण के रूप में बालक आया है आपसे मांग कर कुछ लेने की, ये पोल खोल गया है कि बालक ब्राह्मण नहीं है, वामन नहीं है, तो साक्षात भगवान है। ओ धोखा दे सकता है, क्यों इसे बनकर आए, उसका पीछे बहुत काम हो सकता है, खबरदार। गुरु जी ने बताया, बोले कि सब कुछ ले जाएगा, ये जान करके भी बलि महाराज दिगे नहीं देने के तरह। तो उनके पत्नी भी देखिए वो कैसी थी, वो जाकर समझाता कम से कम क्यों ये सब पंगा ले रहे, रिस्क मत लो। लेकिन उन्होंने जब देखा कि उनके श्री पतिदेव अपने वचन से अटल रहे और भगवान को सर्वस्व दान करने के लिए तैयार हो गए, तो इतने प्रसन्नचित्त हुई महारानी विंध्यावली ने। वो अपने हाथ में सोने की परात में पानी भर करके दौड़ के आई, बोले वामन देव चरण नापने से पहले चरण पखार दूं पहले। बोले जिस श्री चरण में त्रिपाद तीन पग भूमि लेंगे, इस चरण को पहले मैं और एक बार धो लूं। जब भी स्वागत समय में धुलाया गया था, लेकिन फिर भी और एक बार, क्योंकि बाकी बाद में तो चरण धोलने के लायक रहेगा ही नहीं। उनको शायद पता था, भगवान ने बुद्धि दे दी थी, अब यह धोला तो परात के अंदर जा सकता, लेकिन कुछ मिनट के बाद परात क्या, संसार भी कम पड़ जाएगा, इतने बड़ा हो जाएगा, अभी धुलाना तो धुला दो। तो सोने की पात्र में जल भर करके लेकर आई और आकर पति के सामने वामन देव के चरण में बैठ गई। तो वामन देव ने भी सॉरी बलि महाराज ने प्रसन्न होकर के भगवान के चरण धोने लगे। पहले जल डाले, जल डाल करके पति पत्नी दोनों फिर धोए चरण, धो करके उसको बताया गया चरण को उधर कुछ चढ़ाए, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड को पवित्र करने वाले भगवत चरणादों को दोबारा सर में धारण किए, दोबारा सर में धारण करके तब प्रार्थना के, प्रभु अब हम तैयार, अब दोबारा आपके चरण धो चुके हैं, आपके जल चढ़ा चुके हैं, अब तो आपसे पूर्ण अनुग्रहित हो चुके हैं आपकी कृपा से, अब आप जो जिसे लेना चाहे दान लीजिए। जब इस प्रकार दान देने के लिए प्रस्तुत हो गए, उनके चरण को धो करके चरणादों को सर में चढ़ाए, तब वर्णन आता है कि इस घटना को देखे तो सभा में जितने उपस्थित लोग थे और ऊपर से यक्ष राक्षस गंधर्व किन्नर देवता आदि जितने सब देख रहे थे कि भगवान आए हैं, क्या करेंगे कैसे करेंगे, सबको तो पता चल गया कि ये कुछ गड़बड़ करेंगे। सभी बड़े भारी भीड़ जमा हुआ था देखने के लिए, सभी देख रहे हैं कि बलि महाराज अपने वचन में अटल होकर के भगवत को सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार हो गए, इतने प्रसन्न हुए कि सब उनके जय जयकार करने लगे और ऊपर से पुष्प वृष्टि होने लगा। जय हो, धन्य है बलि महाराज की, धन्य हो, केवल बलि महाराज ने उनके पत्नी भी, धन्य है आप, ऐसे त्यागी ऐसे सब कुछ देने के लिए, यद्यपि शुक्राचार्य ने हेवी वार्निंग अभिशाप दे दिए, फिर भी धन्य हो आप, धन्य हो। सचमुच बलि महाराज ने इसी केस में महाजन घोषित कर दिया गए। पहले तो मैं जैसे कल बता रहा था इतने एडवांस डिवोटी थे नहीं, लेकिन गुरु जी के अभिशाप देने के बाद भी, इतने समझाने बाद भी, सब कुछ इतने जान सुनकर भी, जानबूझ करके जो भगवान को पूर्ण समर्पण किए, गुरु को त्याग दिए, गुरु को त्याग करके बलि महाराज छोटे नहीं बन गए, समाज से मिताड़ित नहीं हो गए, बल्कि पूरे समाज में महाजन पद से प्रतिष्ठित हो गए। ये देखिए, बलि महाराज ने गुरु त्याग करके महाजन बने। ब्रजगोपांगना तो अपने पतियों को सारे कुल धर्म सब धर्म को त्याग करके महाजन बन गए। विभीषण ने अपने भाई को त्याग के महाजन महात्मा बने। प्रहलाद ने अपने पिता को त्यागा। और देखते हैं पुराण में सब अपने अपने अति नियर एंड डियर को जब भगवान के लिए त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो बहुत बड़े गुण हो जाता है। ऐसे त्यागना बहुत खराब है, लेकिन अगर भगवत अर्थे भगवत प्रत्यार्थे अगर उसको त्यागते हैं छोड़ देते हैं तो पूरे संसार देवताओं से लेकर के असुर पर्यंत आपके वंदना करेंगे, बहुत युग पर्यंत आपके प्रशंसा होगा। तो आज आचार्य को त्याग करके बलि महाराज महान हो गए। इस प्रकार उनके सरलता, इस प्रकार भक्तिभाव को देख करके सारे ऊर्ध्वलोक अधलोक के सब पुष्ट पुष्ट किए, बहुत साधुवाद किए, प्रशंसा किए। इस प्रशंसा के बाद वामन देव अभी तैयार हो रहे हैं आपने जमीन लेने के लिए। बोले जो आप तीन पग लेने के लिए तैयार है, मैं देने के लिए तैयार, अब लीजिए जहां हम लेना चाहते हैं। देखिए पहले वामन देव जब आए यज्ञ सलाह में और जाचक बनकर मांगने के लिए, और पहले तो बलि महाराज आपने बताया कि मैं ये दे सकता हूँ, ये दे सकता हूँ, ये दे सकता हूँ। वामन देव बोले देखो मैं ऐसे कुछ लेने वाला नहीं हूँ, मैं छोटा सा ब्राह्मण बालक हूँ, मुझे जो चाहिए इतना ही चाहिए। क्या चाहिए बोलो, क्या चाहिए, एग्रीमेंट साइन के बिना मैं नहीं बोलूंगा। फोर्स किए, एग्रीमेंट साइन हो गया, जो हुआ इतने विरोध हुआ सब कुछ। अब जो सैंपल देखा है तो सभी के सामने भरी सभा में, इसी पैर में तीन पग लूंगा, अब एक तो साइज उनका छोटा था, ढाई तीन फीट का होगा, ढाई तीन फीट में वो जो चरण दिखा रहे थे वो इसके हिसाब से और छोटा होगा, कुछ इंच के होंगे। हम लोग को साढ़े पांच फीट में हमारा नौ इंच आठ इंच का चप्पल लगता है, बामन देव और ढाई तीन फीट में उनका कितने साइज होगा, करो पैर भी कितने छोटे छोटे होगी, एक डग लगे तो कितना होगा, पग करेंगे तो। वो सैंपल देखा तो भरी सभा में, इसी में लूंगा तो कोई भी सोचेगा भाई इसमें तीन पग होंगे, ये एक फ्लैट भी नहीं बन सकता, एक कुटिया भी नहीं बन सकता, लेगा तो कहाँ लेगा, यहीं पे लेगा, कैपिटल सिटी में लेगा कि कोई और जगह में लेगा, कहाँ लेगा, कैसे छोटी छोटी तीन पग भूमि, इसमें कुछ भी नहीं बनने वाला है, एक ईंट तो कम से कम एक फीट का होता है, तो ये छोटी छोटी पग दिखाता है, इसमें क्या होगा। भरी सभा में आश्चर्य भी हो रही थी, इतनी कम भूमि लेना चाहता है, इतनी बड़ी बात करता है, लेकिन भगवान की रहस्य अभी प्रकट हो रहा है। जब अली महाराज बकायदा सबको छोड़ करके तैयार हो गए, अब भगवान अपने स्वरूप दिखाते हैं, क्योंकि सचमुच भगवान आए थे छलने ठगने के लिए बलि को। हम भी उनको भगवान वामन देव को जो वंदना करते हैं वही बोलते हैं, छलयसी विक्रमणे बलि मद्भुत वामनम पद नख निरजनित जन पावनम केशव धृत वामन रूप। छलयसी चीटिंग करने के लिए, ठगने के लिए आए थे, ये ठगने का बात भगवान से आए, वही शुरू किए। बलि महाराज कुछ सैंपल दिखाए, कुछ और काम किए, कुछ जो पग दिखाया अपना रूप बिल्कुल वो नहीं बनकर आया थे। अब जब लेने के टाइम आया, अरे इतने बढ़ने लगा, इतने जोर से इतने बड़ा हो गया, कोई अगर पूछ सकता भाई ये तो अब सैंपल तो दूसरा दिखाया था, ये कैसा है, लेकिन बोल भी नहीं सकते कि भाई मैं कोई आपसे लिया को जोड़ा क्या, कोई इधर तो नहीं क्या, मैं खुद बढ़ गया, मैं क्या करूं, मेरे पैर था, मैं कुछ नहीं इंजेक्शन वगैरह लगाया नहीं, कुछ नहीं किया, टाना खींचा तना नहीं किया, वो अपना बढ़ गया। अब बढ़ा तो इतने बढ़ा पूरे ब्रह्मांड के ओर छोर इतने बढ़ गया। इस श्लोक में भगवान देव का वामन देव जो अपने विक्रम रूप किए, महाविक्रम हो गए, वामन थे अविक्रम रूप धारण किए, इतने बड़े हो गए। तो इसी में दिखाते हैं बलि को, बलि जो सोच रहे देख रहे हैं, बलि भी सामने देख रहे हैं भगवान की वृद्धि को, वो कैसे बढ़ते होंगे, वो अपने आप सब कन्विंस कर दिए कि सब मैं हूं। वही दिखाते हैं कि पूरे आकाश पातल दिशाएं विवराएं समुद्र पर्वत सब कुछ जो है, आप जो चाह रहा है कि आप राजा है, आपका अधीन में था, क्या है आपका, ये सब देखो मेरे अंदर है। भगवान वास्तविक भगवान सब कुछ के मन ईशावस्यम इदम सर्वम जत किंचा जगत क्याम जगत, सब कुछ ईश्वर ही मालिक है, ईश्वर के सब कुछ है। वो देखा दिए, बोले तुम क्या मुझे देगा, ये सब तो मैं ऑलरेडी हूं, तुम देगा क्या। तो इस प्रकार भगवान ने अपने विक्रम स्वरूप दिखाए, संपूर्ण ब्रह्मांड उनके अंदर दिखाई पड़ने लगा, पशु पक्षी मनुष्य देवता ऋषि सब भगवान वामन देव करे। बोली महाराज आश्चर्य को देख रहे हैं कि ये क्या, ये तो पूरे विश्व हो गए, हमें क्या सोच रहा था नापेगा, क्यों कहां नापेगा, टेप फेप कुछ जरूरत नहीं, तो सारे हुई है, कहां से कहां तक नापे। तो इस प्रकार वामन देव ने बलि महाराज को दिखाए, बोले ये तेरे मन में जो अभिमान था कि मैं दाता हूं, मैं दे सकता हूं आपको, आपको खुश कर दूंगा, तो अभी देख लो। तो इस प्रकार में आपने स्वरूप दिखाए उनको, जिसमें प्रभुपाद जी कहते हैं इस प्रकार दिखाए कि बलि महाराज समझ गए कि ये जो कुछ मैं सोच रहा था मेरा है करके, ये सब पहले से उन्हीं का है, सचमुच यही वास्तविक सत्य है। हम लोग मानते हैं कि हमारा है, हमारे हमारा कुछ भी नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है। अगर भगवान के साक्षात्कार एक बार हो जाए ना कुछ अंश में, तब ये फैक्ट हमको रियलाइज हो जाएगा कि वी आर नथिंग, कुछ भी हमारा नहीं है। वो लोग तो कुछ भी हो जाते, लोग बोलते हैं कि हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं, लेकिन कुछ बाकी नहीं है, कम से कम मेरे शरीर तो मेरा है, मैं तो मेरे शरीर के मालिक तो हूं, बाकी कोई नहीं है, पत्नी बात नहीं मान रही, बेटा भी नहीं बात मान रहा है, भैया भी निकाल दिए, ओ संसार सब ऐसे, कोई किसी का नहीं है, कोई कुछ नहीं है ऐसे, लेकिन मैं तो अपना हूं, ये तो कम से कम मानेगा। ये यहां तक ये प्रमाण कर दिए तुम भी अपने नहीं हो। हम जो ये सोच रहे हैं कभी कभी अहंकार से कि हमारा शरीर अपना है और मेरे अर्डर से चल रहा है, मन क्या आया मन क्या नहीं आया, मन क्या बैठा मन क्या खड़ा, जो भी मेरे मन से चल रहा है लेकिन ये भी भ्रांत धारणा है, अपना शरीर भी हमारा नहीं है, वो भी उनका है। हम देखते हैं हमारा शरीर होते हुए भी हम सोचते होंगे मैं बैठकर बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, लेकिन ये हमारा घमंड है, हम बोल रहे हैं। बहुत ऐसे संसार में लोग हैं जिनका शरीर है, मुंह है, और बोलना चाहते भी है, जिह्वा है, सब कुछ है, लेकिन बोल नहीं पाते, गूंगे, बोली ना, बोला नहीं जाता उन्हें, चाहते हैं खूब बोलने के लिए। अब भगवान जब सैंक्शन नहीं करेंगे कुछ होकर भी नहीं हो सकता। अब हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हम सुनने वाले हैं, सुनते हैं, दो दो कान है हमारा खुला, ये भी घमंड है। हम कान होते हुए भी सुनने, बहुत लोग ऐसे हैं जिनका कान है, होल है, सुनना चाहते भी हैं, बहुत प्रयास भी करते हैं लेकिन नहीं सुन पाते, गूंगे, बहरे हैं। तो कुछ नहीं है, अगर फिर भी हम मानते हमारे शरीर के ऊपर हम मालिक है, अगर सचमुच हम शरीर के मालिक होते तो हम में से कोई नहीं चाहते कि हमारे बाल सफेद हो जाए, कोई नहीं चाहता। तो मालिक है तो बाल को ऑर्डर दे दो, अरे भाई बाल हमेशा ऐसे काला रहना, मानेगा आपका बात? नहीं मानेगा, बताओ। तो बाल भी आपकी बात नहीं मान रहे, बाकी क्या बात करेंगे? कुछ नहीं मानने वाले, जो आपकी इच्छा, कुछ नहीं चलेगा, किसी के मालिक नहीं हम लोग। तो इस प्रकार से समर्पण की विधि, गोपाल जी ने लिखते हैं कि भक्त लोग गंगा में स्नान करते हैं और गंगा के जल को उठा करके गंगा में दे देते हैं, और गंगा से एक्चुअली जल लिया, उसमें गंगा जी का क्या घटा, तो डर जाल दिया क्या गंगा में बढ़ जाएगा ना, क्या हो, कुछ नहीं होना, उसे फर्क नहीं पड़ना। लेकिन अगर हम इसे क्रिया करेंगे तो हम गंगा माता के भक्त बन जाएंगे, हमारे द्वारा गंगा पूजा साधित हो जाएगा गंगा देव कृष्ण। ठीक इसी प्रकार भगवान ये दिखाते हैं, ये दुनिया में तो किसी का कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो, जिसको मानते हैं मैं करके जो अहंकार है, उसको अगर हम दे दें मैं और मेरे को भगवान के शरण में, तो हम भगवान के भक्त बन सकते हैं। भगवान के भक्ति के लिए ये जो बलि महाराज जी को समर्पण जो किए, जो सर्वस्व दान देने के लिए तैयार हो गए, और भगवान ने नापेंगे, अभी सारे नाप लिए, तो ये श्लोक में बता दिया कि पूरे आकाश से लेकर दिशाओं पर्यंत पशु पक्षी कोई प्राणी कुछ नहीं बचे, सब एक डग में ले लिए, ओ दूसरे में ऊर्ध्वलोक को ले लेंगे, तीसरे के लिए तो कुछ बचा के भी नहीं, तीन लोग को दो पैर में, दो डग में नाप लिए, तीसरे को बचा भी नहीं। और बलि महाराज ने आत्मसमर्पण करते हैं, अपने शरीर को देते हैं, बोले मेरे जितना था दे दिया, अभी मैं तो बाकी हूं। लेकिन वो भी इंद्रावली आकर के डांटे कि बोले ये अभिमान मूड है, ये सोच रहे कि वो भी उनका है, कुछ भी नहीं उनका, लेकिन फिर भी बलि महाराज ने दिए। तो इस प्रकार के जो आत्मसमर्पण है, यही वास्तविक भक्ति की शुरुआत है। जब तक, इसलिए शरणागति, शरणागति समर्पण है, इसी को भगवान ने पूरे गीता के उपदेश समझा समझा करके अंततः जो फाइनल इंस्ट्रक्शन में बोले, सर्वधर्मान, बाकी से ये धर्म वो धर्म सब छोड़ो, सर्वधर्मान परित्यज्यम माम एकं शरणं व्रज। सर्वधर्म छोड़ देंगे, धर्म नहीं करेंगे तो अधर्म होगा, फिर पाप होगा, कैसे सब धर्म छोड़ करके आप पूजा करेंगे? बोले पाप के लिए क्यों सोचता, मैं बैठा हूं ना, हम सर्वभ्यो पापभ्यो मुखई स्वामी मां सुच, पाप के लिए क्यों डरते? लेकिन भगवान ने जो धर्म को स्थापना करने आते हैं, यही धर्म है शरणागति धर्म, सरेंडर। तो वही शरणागति धर्म को भगवान ने इस बलि वामन प्रसंग में दिखाते हैं, किस प्रकार जो बलि महाराज वास्तविक रूप में सारे दुनिया जानता था, त्रिलोकाधिपति थे, तीन लोक के स्वामी थे बलि महाराज, और उनके सामने भगवान आए एक छोटे बटु ब्रह्मचारी वामन बनकर के आए, छोटा सा बालक, छोटे साइज में, और आकर के ऐसे मांगना शुरू किए, सबसे छोटी मांग किए, तीन पग भूमि चाहिए, लेकिन तीन पग भूमि में ऐसे विक्रम बने, ऐसे बड़े बने कि संसार के लोग बोले सब आश्चर्य हो, बोले बताओ ऐसे भी चीटिंग किया जा सकता है? तो देने से पहले सोचना चाहिए, भले कोई छोटा सा आदमी छोटी सी मांग करे लेकिन खतरनाक भी हो सकता है। हाँ ऐसे कहीं कहीं महापुरुष कहें जो छोटे होते हैं वो बड़े पावरफुल होते हैं, बड़े होते हैं कहीं मुझे क्यों बोलता, बोले मोटे देख करके डरना नहीं, पतले देख करके लड़ना नहीं है कि छोटे जो होते हैं बड़े पावरफुल होते हैं। भगवान छोटे बनकर गए थे मांगने वाला बनकर के, लेकिन जा करके जिस कंडीशन में, अब इस कंडीशन ऐसी परिस्थिति था कि उनके घर वाले जो उनके मित्र सब कुछ बोलेंगे कि इसी ये तो चीटिंग कर रहा है, उनको नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, सरासर चीटिंग कर रहा है। चीटिंग जो किया तो फिर क्यों राजी होंगे, वो भी गलत किया आपने, जो बोला था नहीं कर रहा है, छोटी छोटी पैर दिखाया था और अभी बड़े हो गया, हम क्यों दें, कह सकते थे, लेकिन नहीं। छलित होकर भी, ठगे जाकर भी, सभी का सामने प्रताड़ित होकर भी पीछे न हटना। भगवान को देना है तो देना ही है, और भगवान को देने से, जिसे काल को से बता रहे थे आचार्यगण कहते हैं, भगवान को देने से कोई गरीब नहीं हो जाता। भगवान का तो सब कुछ है, हम देंगे क्या, ये तो हमारे झूठी मूठी अहंकार है कि हम सोचते हैं हम देंगे करके, उनका सब कुछ है। उनको देने से कोई छोटा नहीं हो जाता, कोई अपमानित नहीं हो जाता, जैसे बलि महाराज ने किए। बलि महाराज ने सब कुछ दे दिए सब होते होते, और ये संपूर्ण जगत के, संपूर्ण संसार के सारे लोग उनके साधुवाद किए, उनको प्रशंसा किए। अगर संपूर्ण समाज से, पूरे ब्रह्मांड से आप प्रशंसा लेना चाहते हैं तो सबसे सरल सुगम सहज उपाय है भागवत समर्पण। यही इस प्रसंग में सिखा गया। अब बाकी शुक्राचार्य कितने बड़े पंडित थे, कितने बड़े विद्वान पुरुष, संजीवनी विद्या को आयत्त करते, लेकिन कितने लोग उनको सार सार कर, कितनी प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन बलि महाराज, इस प्रकार कोई विद्या ज्ञान घमन कुछ नहीं था, कोई अचीवमेंट नहीं था, डिग्री नहीं था, लेकिन केवल एक काम उसने किए, भगवत कृपा से ही किए, भगवान ने स्पेशल कृपा कर दी उनको, इनके कृपा से केवल सर्वस्व भगवान को नौछावर कर दिए, दैट्स इट। केवल इतने क्रिया से अभी अभी ऑन द स्पॉट भगवान को देने के लिए तैयार हो गए, पूरे ब्रह्मांड के समस्त विद्वान पुरुष खुली आम उनकी प्रशंसा किए, पुष्प वृष्टि किए, जय जयकार किए। जब जितने जल्दी से जल्दी संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई सबसे बड़ा बनना चाहता है, सबसे मुख्य प्रशंसित बनना चाहता है, सबसे इस प्रकार पद को प्राप्त करना चाहता है, तो सबसे सुगम सरल सीधा उपाय है भगवत चरण में पूर्ण शरणागति। ये बलि महाराज के प्रसंग में शिक्षा प्राप्त। बलि ने बाकी कुछ नहीं किए, तैयार हो गए देने के लिए, जबकि उनके आचार्य उनको हैवी वार्निंग दिया और अभिशाप भी दे डाला, नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। सब कुछ सहन करके भी, इतने सारे तकलीफ, इतने अपने अपने गुरु से भी शापित होने के बाद भी जब भगवत समर्पण के लिए तैयार हो गए, तैयार होते ही इसी क्षण से संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रशंसा करने लगा, पूजा करने लगा, गुणगान करने लगा। हम लोग सभी चाहते हैं लाभ, मान, पूजा, प्रतिष्ठा, कौन नहीं चाहता, ये तो हमारे पूरे शरीर में इंच इंच में ठुस भरा हुआ है, सब चाहते हैं। लेकिन बाकी हमारे प्रयास में जो करते हैं नहीं होता। माधवंदपुरी प्रसंग में कविराज गोस्वामी कहते हैं, प्रतिष्ठा रा स्वभाव ऐ जगत विदित, जई चाहे तारे न मिले से विधाता निर्मित, जे नहीं चाहे, जो नहीं चाहे उसको प्राप्त होगा, यही विधाता का विधि नहीं, ये प्रतिष्ठा का स्वभाव है। जो चाहेगा उसको मिलेगा नहीं, जो नहीं चाहेगा उसको मिलेगा। माधवेंद्रपुरी वो बिल्कुल अमानी थे, कुछ नहीं चाहते थे, वो तो अजातक वृत्ति के थे, कुछ मांगने नहीं थे कुछ भी, लेकिन भगवान ने आदेश दिए कि गर्मी हो रहा है, जाओ कुछ व्यवस्था करो, क्या कर सकता हूं, इलेक्ट्रिसिटी तो था नहीं तभी, अब जो भी पानी डालता हूं, अलर्ट चामर करता हूं, पंखा करता हूं, अरे उसमें कुछ नहीं होता, गोवर्धन में बहुत हाई टेम्परेचर है, फिर क्या करूं, कुछ बताओ, अब तो कुछ उपाय नहीं, यही करने का था, मैं कर रहा हूं ना, इसमें कुछ नहीं होता, फिर कुछ बताओ क्या करूं, ना बताता हूं करोगे ना, आपकी सेवा के लिए आप बताएं करेंगे ना, चंदन ला करके पीस करके चंदन लेप करो मेरे से, तब ठंडा होगा। देखिए हम लोग आजकल एसी वगैरह चलाते हैं, हम एसी के थोड़ा ठंडी हवा आता, लेकिन बाहर में कितनी गर्मी हवा जाता, लेकिन चंदन में ऐसा कुछ नहीं है, चंदन में पूरे दिन भर अंगराग लगाओ, शरीर ठंडा भी रहता है, सुगंध भी रहता, जो गर्मी के सीजन में दोनों आवश्यकता। तो भगवान ने ये नेचुरल व्यवस्था किए हैं, तो बोले कि लेकर आओ, लेकिन यूपी साइड में चंदन फंदन तभी चलता नहीं था, बोले कहां से चंदन लाऊं? बोले जाओ साउथ इंडिया नहीं जा पाएगा तो कम से जगन्नाथपुरी जाओ, वहां से लेकर आओ चंदन का पुर लोपिष्ट करके लगाओ। तो माधवनपुरी सोचे, बोले चलो कोई बात नहीं, भगवान बोल रहे हैं, मैं कैसे जाऊंगा, मैं अकेला उनको शिवा पूजा करने के लिए, किसी को भेजता हूँ, किसी को भेज दूंगा, कई उनके फॉलोअर थे। भगवान बोले नहीं ऐसा नहीं चलेगा, तुझे खुद ही जाना पड़ेगा, किसी को भेजने से काम नहीं चलेगा। मैं खुद जाऊं ना? अरे बूढ़े उम्र में फिर तैयार हो गए चलने के लिए, किसी की सेवा पूजा का दायित्व दे करके पैदल में चले गोवर्धन से जगन्नाथपुरी। आजकल जो डायरेक्ट ट्रेन जाता है तो 1600 किलोमीटर है, लेकिन तब डायरेक्ट नहीं, वो बंगाल होकर के पूरे होकर के जाना पड़ता था, यार बंगाल बॉर्डर खड़पुर होते हुए। तो वो रूट में जाएंगे तो कम से कम 2000 किलोमीटर होगा। 2000 किलोमीटर तभी जमाने में कोई रास्ता था ना, नदी के ऊपर ब्रिज था ना, पहाड़ जंगल कुछ, इसी में पैदल में चलते चलते कितना दिन लगेगा लगा। और अजाचक वृत्ति के संत कुछ मांगेंगे नहीं किसी को, कुछ ऐसे मिला तो खाए नहीं तो उपवास। ऐसे वृद्ध आदमी चलते चलते गए और ये बंगाल होते हुए जब उड़ीसा के बॉर्डर में पहुंचे तब भूख भी प्यास में, लेकिन कुछ मांगते नहीं थे, लेकिन शाम हो गया था, कहीं रुकने के लिए जागा पूछे किसको, केवल पूछने के लिए कहीं व्यवस्था है क्या कहीं रुकने के लिए जंगल पहाड़े। बोले अरे थोड़ी देर में गोपीनाथ जी के मठ है, गोपीनाथ मंदिर जाओ, खूब जगाचा खाओ प्योर हो। तो गोपीनाथ का नाम सुनकर के माधवनपुरी का मन में उत्साह हुआ कि मैं भी गोपाल की सेवा कर रहा हूँ, वो भी गोपीनाथ है, बड़े प्राचीन मंदिर बताते हैं, जाकर थोड़ा सीखूंगा कैसे उनके पूजा परिपाटी कैसे भोग सेवा करते हैं, मैं भी ऐसा सेवा करूंगा, चंदन लेकर आ जाना मुझे वापस। वापस आकर मैं तो अभी इतने एक्सपीरियंस नहीं हूं, थोड़ा सीखना चाहिए। मन में उत्साह हुआ तो गए देखने के लिए गोपीनाथ मंदिर। गोपीनाथ मंदिर देखे, साक्षात गोपीनाथ भगवान रामचंद्र के द्वारा निर्मित सिद्ध गोपीनाथ भगवान, तो उनको दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए, नृत्य कीर्तन किए। अब शाम तो हो चुका था, अब शाम के समय में शयन आरती के लोग पूछे किसी पुजारी से कैसे पूजा हो रहा है, कोई विस्तार थोड़ा बताओ। वो बोले सेवा पूजा तो ऐसे ऐसे होता है, लेकिन यहाँ एक खास सेवा है जो भगवान को अर्पित हो जाए, एक प्रसाद का आइटम जिसका नाम है अमृत कली, वो शयन आरती के पहले ही भोग लगता है। वो आइटम का नाम है अमृत कली, वो बिल्कुल गाय के दूध से बनता है, वो बिल्कुल ऐसे अमृत जैसा है ही, और भगवान तो पसंद करते हैं रबड़ी वगैरह। तो 12 कुल्हड़ में मिट्टी के बर्तन भोग लगता है और वो तो ये विश्व में स्पेशल है। तो इस बात को सुन करके माधवनपुरी के मन में ये बात आया कि बहुत अगर ये स्पेशल आइटम है, अगर मुझे थोड़ा पता चलता मैं भी ऐसा बना करके अपने गोपाल को मैं ही भोग लगाता, लेकिन पता कैसे चलेगा, मैं तो खाया नहीं, मेरे पास कोड़ी पैसा तो नहीं खरीद के मैं एक कुल्हड़ खा लूं, अब कैसे कैसे बनाते हैं, एक बार टेस्ट अगर कर लूं ना तो मुझे पता भी लग जाए। तो मन में ये प्रसाद को टेस्ट करने के लिए विकट लालसा आया, इच्छा हुआ थोड़ा खा लूं तो पता चल जाए कैसे बनाते हैं क्या करते। तो यही मन में आस्वादन करने के लिए इच्छा करते हैं, देखे कि एक ब्राह्मण ने वो परात लेकर जा रहा है, पूछा ये कि यही तो है, यही अमृत के लिए ना, मुझे एक पाने के लिए इच्छा होता, अरे भोग नहीं लगा अभी तक, अभी जा रहा है मंदिर को, दमणिया है, अरे भोग लगेगा, अरे माधवनपुरी के लगा देखो, अब ठाकुर जी को भोग नहीं लगा, ठाकुर जी स्वीकार नहीं कि मैं खाने के लिए तैयार, मन में विचार करता हूँ एक मुझे चाहिए था, आपने को इतने धिक्कार किए, बोले मैं दुनिया को दिखा रहा हूँ कि मैं अजाचक वृत्ति के संत हूँ, लेकिन देखो भगवान स्वीकार करने से पहले मैं खाना चाहता हूँ, कितने धोखेबाज हूँ, कितने चीटर हूँ, आपने को इतने कोसने लगे, धिक्कार करने लगे, और दुखी होकर के भगवान के सामने से उठकर चल पड़े। बोले ना मैं भगवान के सामने दर्शन करने के लायक नहीं, इतने धोखेबाज, जा करके पीछे मार्केट दिन में लगता था, बगीचा था उसमें पेड़ के नीचे बैठ करके रोते हुए अपने को कोसने लगे। बोले तू माधवनपुरी क्या अपने आप समझ रहा है, कितने अभिमानी, भगवान स्वीकार नहीं किए, प्रसाद नहीं बना, तू खाने के लिए इच्छा कर रहा था, यही से संत है तू, इस प्रकार अपने आप को प्रताड़ित कर रहे थे। वो तो चले गए और पुजारी ने भोग लगाया, सने आरती भोग करके बस प्लेट ला के रखा और कबाड़ बंद किया, पट लगाया और सो गया। यहाँ भक्त नहीं सोया, रो रहा है कि अपने को कोस रहा है, यहाँ भगवान भी नहीं सोए, भगवान भी नहीं सोए गोपीनाथ, पुजारी सो गया था, आधी रात में उठाए, उठ, पुजारी बोलते हैं कौन मुझे उठाता है, 12 बजे अभी तो, बोले उठ। वो देखा उठकर कोई नहीं बोला, ठाकुर जी देखा शायद सपना देखा गलती में, फिर वो दोबारा धमकी दे बोले सबन सनाश को मैं उठ। अरे उठा, बोला क्या करूं ना, उठ करके जाओ मंदिर खोल करके देखना मेरे धोती के नीचे मैं चोरी करके एक कुल्लड़ खीर रखा हूं, और उस खीर के कुल्लड़ को लेकर के जाना और जाकर के उनको देना माधवंद पुख धर्म, कैसे पहचानूंगा माधवंद, नाम पुकारना वो आएगा, उसको बोल करके देना कि गोपीनाथ में आपके लिए चोरी करके रखे थे उसको लीजिए, ये कह करके देना उसको, और जल्दी करो। पुजारी ने उठा, उठ करके आधी रात में, फिर तभी तो बाथरूम तो होता नहीं था, कुआं में पानी निकाल करके नहाया होगा, नहा कर लाइट नहीं था, बत्ती जलाया होगा, तो दरवाजा खोला मंदिर का, खोल कर प्रणाम करके अंदर जाकर बत्ती लगा कर देखा गोपीनाथ जी, देख करके जो गोपीनाथ मेरे धोती का उठाना उसके नीचे छिपा कर रखा, उठाया सचमुच देखा कुल्हड़ खीर रखा हुआ है। आश्चर्य होगा, प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप, चोरी क्यों किए, ये सारे 12 कुल्हड़ तो आपका ही था, आप चाहते तो सारे दे सकते थे, मुझे बोलते मिल देते कुछ का, ये चोरी क्यों किए आपने, आपको ऐसा काम करना क्यों पड़ा। भगवान बोले भैया तुझे बताया तो जाओ, तुझे पता नहीं मेरा रिकॉर्ड, तुझे पता है मैं आज की चोर थोड़ी हूं, मैं पक्का हूं बचपन से ही काम करता है और क्या, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, मेरा फेमस हूं मैंने, ये नया थोड़ी काम करना, चलो जाओ लेट मत करो यार, हो रहा है जाकर लेके जाओ। भगा दिए पुजारी की, लेके गया कुल्लड़ लेके गया, अब जा करके पीछे बगीचा में, जानता नहीं माधव मंदिर कौन है, भगवान ने नाम बता दिए थे उनको मस्त का, और नाम पुकारा कोई माधव मंदिरपुरी है, माधव मंदिरपुरी कोई है, 3-4 बार तो माधव मंदिरपुरी तो बैठे थे अपने को कोस रहे थे, उठकर देखे बोले अरे यही पुजारी तो है, उसको किसे पता चल गया क्या, मैं इसे बदमाशी कर रहा था करके, तो शायद पीटेगा लगता है, अभी आया रात में ढूंढ करके, अरे वो डर डर के आते हैं, कहले हे ब्राह्मण देव मैं ही है मूर्ख दोषी अपराधी माधवनपुरी, आप ही हो आप माधवनपुरी आप हो, सीधा दंडवत प्रणाम किया, वो समझ नहीं पा रहे कि क्या कर रहा है, दंडवत प्रणाम करके पैर छू करके उठा, बोले देखिए गोपीनाथ जी आपके लिए ये खीर चोरी करके रखे थे, आपके लिए भेजे आप लीजिए, वो तो उनके हाथ में दिया, उनको परिक्रमा किया, दोबारा प्रणाम करके अब नाचते नाचते पुजारी आया, बोला धन्य है महात्मा जी आपके लिए गोपीनाथ को चोरी किए, लेकिन चोरी भी किए, एक ऐसा चोर है पता नहीं चोरी करके फिर बोलता है कि मैं चोरी क्या करके, ये तो बिल्कुल इमैच्योर चोर है चोरी करने के बाद चोर जाकर बोलेगा खुद, लेकिन वो ऐसे चोर है, और जो भी हो लेकिन माधवंदपुरी तो खीर तो खाए, भगवान ने चोरी करके भेजे, खाने की इच्छा भी था, वो खाए अमृत जैसा टेस्ट, वो खीर को सारे खा गए, वो कुल्लड़ को तोड़कर खाए, बोले भगवान केवल खीर थोड़ी चोरी की, कुल्लड़ भी चुराए, ये भी चोरी माल है, तो उसको भी खाए, लेकिन खा करके सोचने लगे ये पुजारी कितने उत्फुल्लित होकर के गया, सुबह मंगला में जो लोग आएंगे उसके बाद में दिन भर तो मेरा ही गान कहेगा, बताएगा ऐसे ऐसे महात्मा थे जिनके लिए गोपीनाथ ने चोरी किए, वो कि बहुत हल्ला होगा, मैं नहीं चाहता हूँ लोग से प्रशंसा पूजा प्रतिष्ठा नहीं चाहता हूँ, वो ही रातों रात सुबह होने से पहले उन्हें चल पड़े, वो बोले कि मेन रोड में जाऊंगा तो पता चल जाएगा, मेन रोड में न जा करके घूमते घूमते को खेती जंगल बाड़ी गांव होकर के निकले, सीधा रास्ते में जाने से 15 दिन लगता, 15-20 दिन पहुंच जाते पूरी, लेकिन ऐसे घूम घूम कर गए और ज्यादा समय लगा, लेकिन ऐसे कहावत है तुंड वायद सहस्त्र कोष, जो एक बात से दूसरे को बोलो इतने जल्दी स्प्रेड होता है, ये आजकल के एडवर्टाइजमेंट एजेंसी भी फेल हो जाएंगे उनके सामने, हाँ बातों के बाद जितने जल्दी स्प्रेड होता, तो पुजारी ने तो सबको बुलाया ऐसे ऐसे महात्मा है, लोग दौड़े कहां गए, अरे मैं देख कर आया, वही महात्मा काल जो शाम को नाच रहे थे ना, ये था ना, अरे मैं भी देखा था, यही थे क्या, यही थे, और अरे एक दूसरे को बोला, तीसरे को बोला, इतने फास्ट स्प्रेड होने लगा, गांव के गांव होने लगा, माधवपुरी जाकर के पूरी पहुंचने से पहले उनके महिमा पहुंच चुका था, पूरी पहुंच चुका था, वहां से बालेश्वर से कम 250 किलोमीटर है, वो पहुंचने से पहले वो पहुंच चुका था कि गोपीनाथ जी ने चोर हो गए, चोरी किए उसके लिए, और उसी दिन सुबह से गोपीनाथ जी का नाम भी एडिट हो गया, गोपीनाथ जी बता रहे थे कुल गोपीनाथ मंदिर, अब उस दिन से क्या हो गए गोपीनाथ, चोर गोपीनाथ, चोर के टाइटल ऐड कर लिए, प्रीफिक्स लग गया उनके नाम में, और क्या चोरी किए थे ना, खीर चोरी किए थे, बताओ खीर चोरी किए थे, खीर चोर आज तक हम लोग बोल रहे हैं उनको। हम बोलते हैं अपने आप को हम भगवान के भक्त है, भगवान को हम पूज्य है, हम प्रशंसा कर रहे हैं, भक्ति भजना कर रहे हैं। बताओ कोई भी कॉमन सेंस सोचकर देखा जाए, कोई बड़े पूज्य व्यक्ति को चोर कहना उनका प्रशंसा है ना, डिफेम है ना, फेम है? थप्पड़ मारेगा वो, क्या बोलता है तुमने? और हम बोलते हैं कि प्रभु मैं आपका हूं, सब कुछ आपका, लेकिन आप चोर हैं। अरे ये प्रशंसा कर रहे हैं उनका महिमा गान कर रहे हैं। आज तक कई सैकड़ों साल बीत गया, भर भर करके बोलते खीर चोर खीर चोर खीर चोर, और बोलते हैं भगवान भी हमारे ऐसे ही है, वो सुनकर खुश होते हैं, हम बोलकर भी खुश होते हैं। तो जाकर जब पुरी में पहुंचे माधवनंदपुरी, अब इतने दिन के बाद बुद्ध से पुरी गए, अब पुरी जाकर के कुछ नहीं था, पैसा मतलब कुछ भी नहीं था उनके पास। वो तो बोले जगन्नाथ जी के दर्शन तो करेंगे, लेकिन मेरा मेन प्रोजेक्ट जो है, जो लेकर आया हूँ, चंदन कहीं से इकट्ठा करना पड़ेगा, चंदन बड़े भारी चीज है, कैसे लाऊं क्या करूं, लेकिन पहले दर्शन तो कर लूं। पूछे भाई, बोले कोई गली में घुस घुस कर गए थे किसी रास्ता, मेन रोड में जाते तो चले जाते, यही से गली रास्ता में आए थे, जाकर एक गली में पहुंचे। पूछे भैया श्री मंदिर के जाने के लिए यही रास्ता सीधा चला चला जाऊं क्या? एक दुकान वाले को पूछे, वो दुकानदार बोला, दुकान खोल रहा था, उनको देखा, बोला आपका नाम क्या है? बोला भाई मैं पूछ रहा हूँ रास्ता बता दो, नाम से क्या मतलब है? नहीं नहीं आपको बताओ ना आपका नाम क्या है। ना भैया नाम फाम क्या, मैं बताओ नहीं तो मैं आगे देखता हूँ। नहीं नहीं रुको रुको, आप माधवनंदपुरी तो नहीं है? मैं तो हूँ माधवनंदपुरी। आप ही हैं माधवनंदपुरी ना? कोई बात नहीं, दुकान बंद करता हूँ, अब खुलूंगा ना, अब चलता, मैं खुद लेकर जाऊंगा, चलिए मेरे साथ में। अब बताया क्या, खुद जाने के लिए तैयार हो गया माधवनपुरी के सामने। बोला अच्छा आदमी, मैं और किसी को पूछता, वो ये लोकल आदमी मेरे साथ में चलने के लिए तैयार हो गया। दुकान बंद करके, दुकान खुला ही नहीं खुला था, उनके साथ में चल पड़ा। बोला चलिए स्वामी जी मेरे साथ, और गया दूसरी दुकान साइड में। पता है यही है जो सुना था ना, यही है, इन्हीं के लिए गोपीनाथ ने चोरी किए थे, वही है महात्मा जी। अरे भाई मैं भी आता हूँ साथ में, वो आ गया। और सारे दोनों तरफ एडवर्टाइज करते करते गया, मंदिर पहुंचने की तो 100 लोग उनके साथ में हो चुके थे, 100 लोग साथ में थे। अरे बताइए अब क्या सेवा करें, क्या सेवा करें, देखो मैं तो ऐसे आया हूँ, असली मुझे जो काम करना था, मुझे था चंदन चाहिए था, गोवर्धन में हमारे पूजित विग्रह गोपाल जी हैं, उनके लिए चंदन, मेरे पास एक लकड़ी है, मेरे पास 100 ग्राम है, मेरे पास 250 ग्राम, मेरे पास आधा किलो है, मेरे पास मैं देता हूँ, मैं देता हूँ। सब लोग आने देने लगे, और जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी के दर्शन, सारे पुजारी को इतनी प्रशंसा की, सब जान चुके थे, वो जाने से पहले इतने प्रसिद्ध ही उनका हो चुका था, सारे लोग इतने प्रशंसा की, इतने सुंदर दर्शन, फर्स्ट क्लास रहन सहन खान पान, राजा तक मैसेज पहुंच गया। राजा बोला मैं 25 किलो दे रहा हूँ चंदन, और कपूर भी दे रहा हूँ, और सारे कम से कम 1-2 मन चंदन और 20-40 किलो कपूर, इतने फटाफट बहुत जल्दी इकट्ठा हो गए इतने कॉस्टली आइटम। और राजा भी उनको वे बिल बना करके स्टाम्प साइन करके 2 आदमी एक्स्ट्रा दिया। बोला वो भी बूढ़ा आदमी कैसे लेकर जाएंगे, आप कैरी करो, और सारे वे बिल साइन करके पक्का करके दिया, आप लेकर जाओ, पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, एडवांस प्रीपेड कर दिया उनको। अब उनको लेकर जा रहे थे, वापस जा करके पहुंचे तो बोले जो मेरे लिए इतने आसान कर दिए, आप बताइए अभी पता चलता ना भगवान ने क्यों चोरी की। भगवान अगर एक कुल्हड़ चोरी ना किए होते, माधवनंदपुरी को चंदन मिलता कहां से? पैसा नहीं कुछ नहीं, इतने कष्ट लिया कहां मिलता? भगवान की कार्य कितने आज इसलिए कोई कर रहे हैं क्या समझे? ऐसे भगवान ने स्वयं उनको ऑर्डर देकर भेजे जाओ, और जानते हैं ये आजाद तक किसी को मांगेगा भी नहीं, पैसा भी नहीं, कैसे लेकर आया क्या करेगा, तो कुछ नहीं किया भगवान ने, केवल छोटा सा 100 ग्राम का खीर चोरी कर दिया। वाह, उसका इफेक्ट देखिए, 2 मन चंदन कपूर, 2 श्रमिक सारे इतने रजिस्टर बिल्कुल पक्का बाकायदा आए, और आकर के माधवनपुरी बड़े प्रसन्न हो रहे थे, जो ठाकुर जी मेरे लिए इतना किए, एक बार कुंभ दर्शन तो करना चाहिए। अब तो दर्शन क्या, वो तो एरिया तो वहीं से तो निकला था उनकी प्रसिद्धि, जैसे गए वो लोग देखे बोले अरे महात्मा जी तो वही आए जिनके लिए ठाकुर जी ने अपने नाम चेंज किए। अब पुजारी आकर दंडवत प्रणाम के बोला गोसाई जी पूरा 12 को 12 करोड़ लीजिए ठाकुर जी को, मुझे फिर मिडनाइट फिर ना उठाए, फिर ना चोरी करना पड़े, आधी रात में फिर ना उठाए, आप पूरा को पूरा लीजिए भैया, पूरा राजभोग भी लीजिए, सहन भोग भी लीजिए, सारे आपका ही आज अब सारे लोग आकर के इतने देने लगे। थर्ड टाइम भगवान ने रात को सपने में फेर आए, पुरी जी खूब खाए बंटे, गोपाल जी स्वयं वो दर्शन दिए, देकर के बोले माधवनपुरी बहुत अच्छा है आपने लेकर के आया, मैं प्रसन्न हूं, लेकिन अभी तुझे आना जरूरत नहीं, यहीं रहो, गोवर्धन आना जरूरत नहीं। अरे आप कुछ गर्मी लग रहा है, चंदन लगाना है आप गर्मी में, इस वक्त आपको चंदन लगाना है ना, गर्मी तो लग रहा है, चंदन लगाना है, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं तो कैसे लगाऊंगा, वहीं लगाओ गोपीनाथ में लगा दो, गोपीनाथ में लगाओ 1700 किलोमीटर दूर से लगाओ चंदन, मुझे इफेक्ट मिलेगा। आजकल हम देखते हैं कि गाड़ी स्टार्ट अगर अपने रिमोट एक छोटे मशीन करते हैं वो 1 किलोमीटर से तो काम नहीं करता होगा, कुछ मीटर से करता होगा, 100-200 मीटर में शायद काम करता होगा कि नहीं, टीवी अगर आका गाड़ी में सुनना रिमोट में, लेकिन ये रिमोट देखिए 800 साल पहले वो चंदन लगाए 1700 किलोमीटर से हुए और ठंडा कोल्ड इफेक्ट उनको मिला गोवर्धन के पहाड़ के ऊपर। हाँ बोलते हैं कि वेरी नाइस, वेरी कूलिंग इफेक्ट, तो वहां से चंदन लगाए और वहां उनका इफेक्ट पड़ रहा है, और बोले कि तुम यही रहे चंदन लगाते रहो। देखिए हम लोग वृंदावन रहना चाहते हैं, भक्ति बोलते हैं ब्रजवास करना, ब्रजवास करना, ब्रजवास करने का अधिकारी माधवेंद्रपुरी से बढ़कर के कोई योग्यता किसका हो सकता है, इतने अधिकारी योग्य पुरुष भगवान ने उनको ही रखवा दिए, बोले आना जरूरत है, अंत तक ही रहे, एक बार पूरी गए आकर के वही रेमुणा में ही रहे, वही शरीर रखे, इतने बड़े पुरुष को आने नहीं दिए, वो बेचारे आते थे वही रुकवा दिए, वही रख दिए। और श्री चैतन्य महाप्रभु उनको प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि माधवनपुरी का जो अंतिम हमेशा वो पद गाते थे, ऐ दीन दयाद नाथ मथुरा नाथ है कदा बोलो, ये जो श्लोक गाते थे श्री चैतन्य महाप्रभु अपने मुख से उनके गुण वर्णना करते हैं, कहते हैं ये जो श्लोक इसके अर्थ को तो पूरे ब्रह्मांड में 3 व्यक्ति जानते हैं, चौथा कभी जन्म ही नहीं हुआ उसको जानने वाला। सारे भक्त लोग बोले प्रभु कौन है 3 व्यक्ति जो उसके सही अर्थ को जानते हैं, बोले इस श्लोक की रचयिता साक्षात श्री राधिका, राधा रानी ने इस श्लोक को कंपोज की थी और उच्चारण करती थी, वो जानती थी उसका अर्थ, दूसरे ये माधवेंद्रपुरी वो जानते हैं वो सारा, और तीसरे मैं हूं, वो हावती इन्हीं के अलावा दुनिया में कोई हुए नहीं ना होगे। इतने बड़े अधिकारी जो राधा रानी के भाव को जानने के एकमात्र व्यक्ति थे, भगवान और राधिका के बीच माधवेंद्रपुरी एक ही थे योग्य व्यक्ति, भगवान स्वयं अपने मुख से स्वीकार करते हैं, इतने बड़े योग्य अधिकारी व्यक्ति को ब्रज में आने नहीं दिए, वही रहो वही मरो, उसका मतलब यही वृंदावन है, वो भी गुप्त वृंदावन है, तभी तो ब्रजवास दिए उनको दिए राधिका के भाव, तो इसे उनको दिए। तो इस प्रकार भगवान के लिए अगर सर्वस्व त्याग करने के लिए, समर्पण करने के लिए हम तैयार हो जाए तो प्रतिष्ठा तो ऐसे आएगा हमारा सोच से बाहर, अचीवमेंट ऐसे आएगा हम सोच भी बाहर। तो ये बलि महाराज के प्रसंग हम दिखाते हैं, बलि महाराज सब कुछ को इवन अभिशाप को सामना करके, सारे अपोजिशन को सामना करके तैयार हो गए कवितांत होने के लिए, सर्वस्व नछावर करने के लिए, लेकिन जैसे किए उनका कोई ऐश्वर्य घटा नहीं, मान घटा नहीं, पूजा घटा नहीं, पोजिशन घटा नहीं। भगवान ने आगे दिखाएंगे, भगवान उनको बोले तू बड़े बड़ी बात कर रहा था, कहां तेरे पास है देने के लिए, अरेस्ट करे, वरुण पास से बांधे, गरुड़ जी को बुलाए, मार पिटाए किए उनके, लेकिन असली में उनको क्या बांधे, भगवान ही बंध गए उनके भक्ति समर्पण का सामने, सदा के लिए बलिद्वार में वामन भगवान रह गए। ये है भक्ति की शक्ति, अगर इस प्रकार पुनः समर्पण किया जाए, भगवान के डांट पीट मार चिटिंग सब कुछ स्वीकार कर लो, भगवान ने ठगे ठगे नहीं, पीटे बांधे अपमानित किए, लेकिन सारे सहन कर लिए, तो युग पर्यंत बलि महाराज के सामने बंद करके रह गए वामन देव, बंध गए, सिक्योरिटी बनने के तैयार हो गए। इस प्रकार के सहन करना अगर किसी हो, सहन करने के बाद भी इतने भारी अपमान, भारी अपोजिशन का सामना करके अगर भगवान काम हो जाना चाहते हैं, मानसिक सोचते हैं और करते हैं ऐसा सारे अपोजिशन के साथ भी, तो उसके परिणाम इतने महान हो सकता है जैसे बलि महाराज का हुआ। तो भगवान वामन देव ने वामन अवतार में यही शिक्षा देते हैं हम लोग को कि देखो अगर मेरे से पंगा लेना है तो इस प्रकार लो, तो देखो फिर मैंने क्या बिट होता है। श्री वामन देव भगवान की समवेत भक्त वृंद की। तो जी कुछ बोले ग्रंथराज श्रीमद भागवत महापुराण की जय।